प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवान के परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान के वनवास की चर्चा चल रही है। पिछली बार चर्चा की थी कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने सीता को समझाया, सीता मानी नहीं, और फिर लक्ष्मण ने भी याचना की, लक्ष्मण की याचना को स्वीकार किया, और अब तीनों सड़क पर चलते हुए, पैदल चलते हुए दशरथ के महल की ओर या कैकई के महल की ओर जा रहे थे। लोगों ने अलग अलग बातें कही। पिछली बार हम लोगों ने सुना कि कैसे उन अयोध्या वासियों ने राम के गुणों का वर्णन किया, वे गुण जो हम सबको अपने अंदर भी लाने चाहिए, जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। फिर भगवान राम दशरथ महाराज के पास पहुँचे। बड़े दुखी थे दशरथ महाराज दूर से देखते ही। भागे उनकी ओर और बीच में ही गिर पड़े। श्री राम और लक्ष्मण ने उठाया उन्हें, और फिर दशरथ महाराज कह रहे थे रामचंद्र से कि जाओ मत, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरा वध कर दो, लेकिन तुम यहीं रहो। श्री राम ने स्वीकार नहीं किया। श्री राम ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, नैवाहम राज्यम इच्छामि, मेरी कोई इच्छा नहीं राज्य की, और राज्य क्या, न धन की ना ही जीवन की इच्छा है मुझे, लेकिन इस समय मेरी एक ही इच्छा है, और वो है आपके वचनों को सत्य करना, इसलिए मैं वन में जाऊंगा। जब श्री रामचंद्र ने ऐसा कहा तो वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि वहां पर जितनी भी स्त्रियां थीं, पिछली बार वर्णन किया था कि दशरथ महाराज ने अपनी सभी रानियों को बुलाया, करीब 350 रानियां थी उनकी, उन सबको बुलाया, तो उस महल में वो सारी रानियां अर्थात एक दृष्टि से रामचंद्र जी की माताएं वहां पर थीं, वे सब रोने लगी, सारा महल उनके रुदन से भर गया। और वहां उपस्थित सुमंत्र जो अब तक सोच रहे थे कि शायद रामचंद्र जी मान जाएंगे, वन नहीं जाएंगे, तो वो मूर्छित हो गए केवल ये सुन के कि अब श्री राम ने निश्चय कर लिया है कि वो वन में प्रवेश करेंगे। थोड़ी देर बाद जब सुमंत्र को होश आया और उन्होंने देखा कि कैकई का हृदय अभी भी पत्थर ही बना हुआ है, तो उन्होंने कैकई को फटकारना शुरू किया। वाल्मीकि मुनि तो इतना भी लिखते हैं कि सुमंत्र जो बहुत मृदुभाषी थे, बड़ा मीठा बोला करते थे, लेकिन अचानक उन्हें बहुत क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गई, अपने दांतों को पीसने लगे, अपने बालों को नोचने लगे, और बड़े क्रोध में कैकई से उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसी स्त्री जो अपने पति को त्याग देती है, या कहना चाहिए कि अपने पति की हत्या करती है, तुम हत्या करने वाली हो अपने पति की, और केवल इतना ही नहीं कुलघातिनी हो, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं सुमंत्र, कुलघातिनी, कुलघातिनी अर्थात तुम कुल का भी घात या नाश करने वाली हो। शास्त्रों में वर्णन है कि एक स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा होता है। एक स्त्री है जो कुल की परंपराओं को बनाए रखती है, लेकिन जब वही स्त्री किसी गलत संग के कारण, जैसे कि कैकेयी मंथरा के संग के कारण, जब गलत मार्ग पर चलती है, अधर्म के मार्ग पर चलती है, तो सारे कुल का नाश कर देती है। भगवद गीता में भी पहले अध्याय में अर्जुन यही कहते हैं, कृष्ण को कारण देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। पहले कहते हैं कि अगर अगर मैंने युद्ध करके ये भूमि जीत भी ली तो मैं आनंद किसके साथ लूंगा, किसका भोग करूंगा, फिर हमें पाप लगेगा। और एक कारण वो देते हैं कि हम कुल का नाश करने वाले बनेंगे, क्योंकि मैं सब पुरुषों को मार दूंगा तो जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुःशाशु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः। कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो फिर वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता। तो इसलिए यहां सुमंत्र कैकेयी को कहते हैं कि तुम कुल घातिनी बन रही हो, अपने पति को मारने वाली। वो कहते हैं कि साधारण अवस्था में, सामाजिक रीति में, एक पत्नी के लिए पति की इच्छा करोड़ों करोड़ों पुत्रों की इच्छा से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। एक पत्नी के लिए अपने पति की इच्छा, चाहे उसके करोड़ों पुत्र उसको न्यौछावर करने पड़े, कर देने चाहिए, लेकिन पति की इच्छा को श्रेष्ठ मानना चाहिए, मान देना चाहिए। और तुम अपने एक पुत्र के लिए अपने पति की हत्या कर रही हो, पति को मार रही हो, त्याग रही हो। हर एक कुल की परंपरा रही है, हमारे कुल की भी परंपरा है कि जब पिता, जो राजा होते हैं, जब वो अपना देह त्याग देते हैं, चले जाते हैं, तो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। ये परंपरा रही है, तो तुम इस परंपरा को तोड़ो मत, परंपरा को बने रहने दो। समाज में परंपराओं का क्या महत्व है? दूसरी ओर भक्ति में परंपराओं का क्या महत्व है? जब भक्त नहीं होते हैं तो वे कुछ परंपराओं का पालन करते हैं, जिन्हें कुल परंपरा कहते हैं, सामाजिक परंपरा कहते हैं। और जब भक्त बनते हैं तब भी हमें परंपराओं का पालन करना होता है। ऐसी परंपराएं जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, उनका पालन हम भक्ति में आकर करते हैं। लेकिन जब तक कृष्ण के पास नहीं आते तब तक हमें कुल परंपराओं का पालन करते रहना होता है, ताकि उसके द्वारा हम कृष्ण की ओर बढ़ सकें। दरअसल जितने भी कुल हैं उन सब की परंपराओं का उद्देश्य यही है कि वो श्री कृष्ण की ओर हमें लेकर आए। हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा उनका पालन करते हुए इनके उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम लोग उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो इसीलिए कुल परंपराएं बहुत आवश्यक हैं। ये ऐसी परंपराएं होती हैं जो हमारे वृद्धों ने, हमारे वरिष्ठों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे भक्ति में उत्थान के लिए स्थापित किए होते हैं। और अगर इन परंपराओं को तोड़ा जाता है तो फिर हमारी प्रगति नहीं हो पाती। तो कैकेयी से कहने लगे, तुम कुल परंपराओं को तोड़ो मत, इसका नाश मत करो। और वो कहते हैं, पूर्व इतिहास बताता हूं मैं तुम्हारे ही परिवार का, तुम्हारी मां ने तुम्हारे पिता के साथ क्या किया था। ये जग प्रसिद्ध है। तुम्हारे पिता कैकेयी राज को एक साधु ने वरदान दिया था, और ये वरदान ऐसा था कि वो पक्षियों की भाषा समझ सकते थे, प्राणियों की भाषा समझ सकते थे। एक समय शैया पर लेटे थे, साथ में तुम्हारी माँ भी थी और एक पक्षियों का जोड़ा था जो आपस में बात कर रहा था। तुम्हारे पिता ने सुना और वो सुनकर उनको हंसी आ गई, वो हंसने लगे। तुम्हारी माँ ने सोचा कि इस समय तो यहां कोई नहीं है, अर्थात ये मेरी हंसी कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि आप बताइए आप क्यों हंसे, ऐसा क्या हुआ। दरअसल उस साधु ने जब वरदान दिया था तो साधु ने कहा था कि ये बात किसी को बताना नहीं, कि तुम इस शक्ति को प्राप्त कर चुके हो या तुम ऐसे प्राणियों की या ऐसे पक्षियों की बातों को सुन सकते हो, ये किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मां ने पूछा अभी बताइए मुझे आप क्यों हंसे, क्या कारण था, आपने मेरा अपमान किया। तुम्हारे पिता ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें इस समय बता नहीं सकता कि मैं क्यों हंसा, क्यों नहीं बता सकते। अरे अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मां ने कहा आप जिए या मरे, लेकिन मुझे यह जानना है कि आप क्यों हंसे। तुम्हारे पिता बड़ी दुविधा में आ गए, अगर बोलता हूं तो मारा जाऊंगा, नहीं बोलता हूं तो तुम्हारी मां ने धमकी दी कि मैं फांसी लगा लूंगी, आप मुझे बताइए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो तुम्हारे पिता फिर से उस साधु के पास गए और उनके सामने अपनी दुविधा रखी। तुम्हारे पिता ने कहा कि मेरी पत्नी ये जानना चाहती है कि मैं क्यों हंसा, और आप कहते हैं अगर मैंने उसको ये बता दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो कहती है कि अगर मैंने उसको नहीं बताया तो वो मर जाएगी। तो मैं बड़ी दुविधा में हूं, क्या करना चाहिए। साधु जो होते हैं वो बहुत सही उपदेश देते हैं या सलाह देते हैं। साधु ने कहा तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर चली जाए या मर जाए, तुम नहीं बताना उसे। तो उन्होंने फिर आकर तुम्हारी मां को अपने घर से निकाल दिया और फिर वो सुख से रहे। तो ये इतिहास है तुम्हारे घर का, तुम्हारी मां का। और एक कहावत है, एक लोकोक्ति है, उसको सत्य मत करो। लोग कहते हैं कि जो बेटा होता है वो पिता पे जाता है और जो संतान, जो पुत्री होती है वो माता पे जाती है। तुम इस लोकोक्ति को सत्य मत करो, तुम अपनी मां की तरह आचरण मत करो, अपने पति को मारने वाली मत बनो। श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने दो। भरत को अगर पता चलेगा कि श्री रामचंद्र वन में चले गए हैं तो भरत भी यहां नहीं रहेगा। और अगर तुमने अभी इस वचन को वापस नहीं लिया तो हम सब श्री राम के साथ वन में चले जाएंगे। जहां श्री राम है वो वन भी बहुत सुंदर राष्ट्र बन जाएगा, और तुम यहां पर अकेले निर्जन स्थान में इस राष्ट्र को वन बनाकर रहना। और देख लेना, अगर भरत सही दृष्टि में दशरथ महाराज की संतान है तो वो भी वल्कल वस्त्र धारण करके वन में राम के साथ रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। फिर तुम्हें क्या लाभ होगा, किसके लिए तुम ये सब करोगे। इसीलिए राम का राज्याभिषेक होने दो, उसे रोको मत। कैकेयी ने स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बड़ी क्रोधित हो गई और कहने लगी कि राम को अभी ही जाना है। उस समय दशरथ महाराज ने आदेश दिया, सुमंत्र तुम जाओ और खजांची से कहो कि सारा खजाना, सारे वस्त्र, सारे आभूषण, सेना, ये सब तैयार करें, ये सब श्री राम के साथ जाएगा। कैकेयी ने जैसे ही सुना वो घबरा गई। कैकेयी कहने लगी कि किसी चीज का रस निकाल देने से वो स्वाद करने योग्य नहीं रहती। अगर आपने सारा खजाना यहां से निकाल दिया तो भरत करेगा क्या राज्य करके यहां पे? इसलिए रामचंद्र जी कोई खजाना नहीं लेके जाएंगे, वो अकेले ऐसे ही जाएंगे। दशरथ महाराज बड़े क्रोधित हो गए तो कैकेयी कहने लगी कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? आपके पूर्वजों ने, सगर महाराज ने अपने ही पुत्र को राज्य से निकाल दिया था, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, उन्होंने राजा राधा गोकुल उन्होंने राजा होने के कर्तव्य का पालन किया, अपने ही पुत्र को निकाल दिया, तो फिर आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जब ऐसा कहा तो सारे लोग वहां पर थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे कैकेयी के मुख से ये बात निकली, क्योंकि जो तुलना उसने की थी वो ठीक नहीं थी। तो वहां पर एक मंत्री बैठे थे, सिद्धार्थ, दशरथ महाराज के वृद्ध मंत्री थे, वे उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि कैकेयी, आप जो कह रही हैं कि असमंजस अर्थात सगर महाराज का पुत्र उसको बाहर निकाल दिया गया, तो वो तो बड़ा पापी था, चलते हुए सड़क पर अचानक किन्हीं बालकों को देख लेता, अचानक उन्हें उठाकर सरयू में फेंक दिया करता, बड़ा क्रूर था, मारा करता था। जब प्रजा ने आकर राजा सगर महाराज को ये शिकायत की कि आपका पुत्र ऐसे हमें हानि पहुंचा रहा है, तो फिर उस समय सगर महाराज ने एक रथ मंगाया, अपने पुत्र असमंजस और उसकी पत्नी को थोड़ा बहुत धन देकर सैनिकों से कहा कि इसे बाहर निकाल दो और जीवन भर कभी ये फिर इस राज्य में प्रवेश ना करे। तो हां, उन्होंने किया क्योंकि वो पापी था। श्री राम के अंदर कौन सा पाप तुम देख रही हो? कौन से ऐसे दोष हैं श्री राम में जिसके कारण तुम चाहती हो कि ये निकल जाए? वैसे जब कैकेयी ने ये कहा था, कहने का उद्देश्य ये था कि असमंजस को भी प्राप्त बड़ी कठिनाई से सगर महाराज ने किया था। आप सबको याद होगा जब हमने सगर महाराज की कथा कही थी भगवान राम के विवाह के पहले, तो सगर महाराज की दो पत्नियां थीं, कोई संतान नहीं थे, तपस्या की, ऋषि मुनियों ने आदेश दिया, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया, तो एक पत्नी के 60,000 पुत्र और दूसरी के एक पुत्र हुआ असमंजस, जिनका पुत्र था अंशुमन, जिसने आगे चलकर गंगा देवी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। तो उसका कहने का आशय था कि बहुत कठोर तपस्या करके, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद को प्राप्त करके जिस पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया था उसे बाहर निकाल दिया, आपने भी यज्ञ से प्राप्त किया है इस राम को, अगर आपको भी निकालना पड़े तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा वो तो पापी था इसीलिए निकाल दिया था। सुमंत्र जिस समय कैकेयी को डांट रहे थे तो उन्होंने कहा था, जब ऋषि मुनियों की बात आई तो उन्होंने उस समय कहा था कि बड़े आश्चर्य की बात है कि वो ऋषि मुनि जो सक्षम है श्राप देने में, दंड देने में, उन्होंने तुम्हें अभी तक दंड क्यों नहीं दिया? बड़े आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी अभी तक फट क्यों नहीं गई, तुम अभी तक कैसे इस पृथ्वी पर खड़ी हो? अर्थात सुमंत्र बता रहे थे कि जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता उसके लिए या तो ऋषि मुनियों के श्राप आते हैं या फिर पृथ्वी फट जाती है, अर्थात या तो उसका नाश होता है या फिर ऋषि मुनियों के श्राप के रूप में उसके ऊपर थोड़ी बहुत कृपा होती है, जैसे नलकुवर और मणिग्रीव के ऊपर हुई थी। तो ऐसे सिद्धार्थ ने बताया, कैकेयी ने कुछ नहीं सुना। देखिए, समाज में जब हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहते हैं, अपने पापों की पोटली को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी भोग की प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते, तो हम अंधे हो जाते हैं। अंधे अर्थात धर्म की दृष्टि से आंखें हैं लेकिन अंधे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन नहीं करते। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने महल के बाहर एक नोटिस लगाया। उन्होंने लिखा कि कल महल में एक भोज दिया जाएगा, लेकिन इसमें उन्हीं लोगों को अनुमति है जो राजसी ठाट बाट के कपड़े पहनेंगे। तो महल के बाहर एक भिखारी रहा करता था। भिखारी ने वो संदेश पढ़ा। भिखारी की इच्छा हुई कि मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके तो कपड़े राजसी ठाट बाट के नहीं थे, तो बड़े गंदे से मैले फटे हुए कपड़े थे। तो वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। कोई उपाय समझ नहीं आया तो सोचा कि ठीक है, राजा से ही जाकर मांग लेता हूँ, राजसी कपड़े तो राजा के पास ही मिलेंगे। तो उसने जाकर संदेश दिया द्वारपाल को कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दी, राजा के पास गए, राजा ने पूछा क्या चाहिए। तो भिखारी ने कहा कि वो संदेश मैंने पढ़ा है कि आपके महल में कल भोज है, तो मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो अगर आप अपने कोई पुराने कपड़े मुझे दे दें तो फिर मैं उसमें भाग ले सकूँगा। तो राजा हंसने लगे। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ और इसको तुम्हारे अच्छे अच्छे कपड़े दे दो। तो पुत्र ले गया और फिर उसने अच्छे से कपड़े दिए। उस समय जब भिखारी ने नए कपड़े सब पहने, राजसी कपड़े, तो अपने जो पुराने कपड़े थे उनको उतार कर फेंक दिया। तो राजा के पुत्र ने कहा कि ये जो कपड़े मैं तुम्हें दे रहा हूं, इनको पहनने के बाद तुम्हें और किसी कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमेशा शाश्वत रूप से तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी पुराने नहीं होंगे, कभी फटेंगे नहीं। तो जब वो भिखारी जाने लगा, उसने पीछे देखा कि अपने पुराने गंदे फटे हुए कपड़े, तो उसने सोचा कि हाँ, ये जो राजकुमार कह रहा है कि ये कपड़े कभी, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हो सकता है सत्य हो, लेकिन अगर आगे चलकर मुझे फिर से इन कपड़ों की आवश्यकता पड़ी तब क्या होगा। तो उसने उन कपड़ों को उठा लिया, एक पोटली बना ली और अपने कंधे पर टांग लिया और चल दिया। अगले दिन राजा के महल में आया, क्योंकि राजसी ठाट बाट के कपड़े पहने थे, उसको प्रवेश मिला, लेकिन वो पोटली टांगे हुआ था। जहां भी जाता, बहुत सारे लोग थे राजा के महल में जो सब इसमें आए थे, तो सब देख रहे थे कि ये व्यक्ति ये पोटली लेकर क्यों घूम रहा है गंदे कपड़ों की। लेकिन वो हर जगह उन गंदे कपड़ों की पोटली लेकर घूम रहा था, ये सोचकर कि हो सकता है कभी ना कभी आगे मुझे इसकी आवश्यकता पड़े। धीरे धीरे उसका जीवन बीतने लगा। वो कपड़े, जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा था, उस राजकुमार ने, वो पुराने नहीं हुए, फटे नहीं, गंदे नहीं हुए, और वो उनको पहने रहा, लेकिन फिर भी उस पोटली को हमेशा रखता था साथ में। और जब एक समय आया, उसकी मृत्यु का समय, तो उस समय उसने सोचा कि ये मैंने क्या किया, ये जीवन भर में ये पोटली उठाकर घूमता रहा, विश्वास नहीं किया कि ये कपड़े गंदे नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। अगर मुझे विश्वास होता तो कम से कम मैं इस पोटली को त्याग देता, और जो राजा के अन्य लोग राजमहल में रहते हैं, जैसे कार्य करते हैं, मैं भी कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं ये पोटली लेकर घूमता था, इसलिए लोगों ने मुझे ज्यादा ध्यान नहीं दिया मेरी ओर। ये कथा के द्वारा एक बहुत सुंदर संदेश हमें मिलता है। राजा भगवान है और हम उस भिखारी की तरह हैं जो भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में प्रवेश करते हैं हमें राजा के पुत्र अर्थात एक शुद्ध भक्त के द्वारा, हमें सुंदर कभी समाप्त न होने वाले कपड़े दिए जाते हैं अर्थात श्रद्धा। लेकिन हम उस श्रद्धा को पहनते हैं, धारण करते हैं, मगर अपने पापों की पोटली, अपने पूर्व जन्म की पोटली को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि ये कपड़े कभी खराब नहीं होंगे, पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि इसी के द्वारा मैं जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकूंगा। इसलिए अपने पूर्व जन्म, अपने पूर्व पापों के से हम संपर्क बनाए रखते हैं, अपने पूर्व जन्म से संपर्क बनाए रखते हैं, और जिसके कारण भक्ति में पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, अगर इस व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा होती, अपनी पोटली को त्याग देता, तो बड़ी आसानी से, जैसे राजा के अन्य अनुगामी थे, उनके साथ वो मिल सकता था। लेकिन क्योंकि पोटली लेकर चला, इसलिए अन्यों के साथ मिल नहीं पाया। इसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं और हमें श्रद्धा प्रदान करते हैं, हम उस श्रद्धा को लेते हैं, भक्ति में आते हैं, लेकिन अपने पापों की पोटली बनाए रखते हैं, इसीलिए शुद्ध भक्तों का संग ठीक से ले नहीं पाते, और यही कारण है कि भक्ति में रुचि नहीं आती। हम लोग जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इन सब के चलते भी वो आनंद मन में नहीं आता, भक्ति का आनंद, वो आसक्ति भगवान के प्रति जागृत नहीं होती, वो प्रेम, वो रुचि उससे परे रहते हैं। इसका कारण क्या है? पापों की पोटली, जिससे अपराध उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जब भक्ति में आना चाहिए तो पूर्ण श्रद्धा से सब कुछ त्याग देना चाहिए, अपने पहले के विचारों को, अपने पहले के जीवन को, अपने पहले के पापों को, अपने पहले की प्रवृत्तियों को, इसको लेकर नहीं आना चाहिए, श्रद्धा से आना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद, इनके शब्दों पर विश्वास। उस भिखारी को उस राजकुमार ने कहा था, अगर उसको विश्वास होता तो वो बहुत जल्दी प्रगति करता। श्रील प्रभुपाद समझाते थे कि हम सब भी भगवान की संतानें हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त वो होते हैं जो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ जाते हैं और वैसे कार्य करते हैं जैसे भगवान चाहते हैं, इसीलिए वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। है हम भी संतान है और वो भी संतान, लेकिन हम में और उनमें अंतर यही है कि हम भगवान से विमुख हैं, हम भगवान के विरोधी हैं, हम भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, विद्रोह किया है हमने भगवान की सत्ता के विरुद्ध। और शुद्ध भक्त वो है जो भगवान की योजना को जानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के धाम में भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करके भगवान के आदेशानुसार कार्य करते हैं, ये शुद्ध भक्त है। तो इसलिए हमें भी इस श्रद्धा के कपड़ों को बड़ी अच्छी तरह से धारण करना चाहिए और अपने पापों की पोटली को त्याग देना चाहिए, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तब हमें श्रद्धा होती है। ऋषि मुनियों में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा, भक्तों में श्रद्धा। तो खैर, सिद्धार्थ ने कैकई को समझाया कि असमंजस और इसमें तुलना और श्री राम में तुलना नहीं कर सकते, ये आप गलत कर रही हैं। तो उस समय श्री राम ने कहा, जब सिद्धार्थ और सुमंत्र इत्यादि बहुत बोल चुके थे, श्री रामचंद्र ने उस समय कहा कि मैं वन में प्रवेश करूंगा, मैंने वचन दिया है और मैं इस वचन को पूरा करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ महाराज से कहने लगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति एक हाथी को दान कर देता है, भगवान ये एक तुलना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हाथी को दान कर देता है और फिर उस हाथी की रस्सी से आसक्त रहे तो ये तो ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में श्री रामचंद्र कह रहे थे कि मैंने सारा राज्य त्याग दिया, अपना सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य पद सब त्याग दिया, अब ये छोटी सी सेना और थोड़ा बहुत धन लेकर मैं क्या करूंगा। तो इसलिए वो कहने लगे कि कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, ये भाव है, ये सच्चा वैराग्य है। चाहते तो स्वीकार कर सकते कि ठीक है आप कह रहे हैं, आप पिता हैं, आपकी ये आज्ञा भी मान लेता हूं। नहीं, वैराग्य, सही दृष्टि में वनवासी बनना है, ये होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। देखिए श्री रामचंद्र जी प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर वो अपने पिता की तरह धार्मिक नहीं होंगे तो लोग उनकी निंदा करेंगे। वो धर्म का पालन क्यों करना चाहते हैं? ताकि उनके पिता का नाम बना रहे। सुमंत्र ने एक बात और कही थी कैकेयी के लिए कि ये जग प्रसिद्ध है कि नीम के पेड़ से शहद नहीं आता। जब उनकी माँ की बात कर रहे थे कि तुम अपनी माँ की तरह हो, तो बता रहे थे कि नीम के पेड़ से कभी शहद नहीं आता। नीम कड़वा है, कड़वा ही रहता है। लेकिन यहां श्री रामचंद्र जी उसी बात को कह रहे हैं कि जो धर्म मेरे पिता ने पालन किया, मैं भी उसी धर्म का पालन करूंगा, मैं गलत कार्य नहीं कर सकता। तो जब ऐसे कहा और श्री रामचंद्र ने कहा कि मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मैं तो बस कैकेयी के जो सेवक हैं, सेविकाएं हैं, वो थोड़े बहुत वलकल वस्त्र या चीर, चीर शब्द इस्तेमाल किया गया है वाल्मीकि रामायण में, चीर मतलब फटे हुए कपड़े, तो वो जाकर ले आए, उनको मैं धारण करूंगा। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि जब श्री रामचंद्र ने ऐसा कहा कि जो कैकेयी की दासी हैं या दास हैं वो जाके ले आए, तो कैकेयी खुद गई भागकर। इतनी कठोर हृदय हो गई थी कैकेयी कि वो खुद गई भागकर और जल्दी से फटे हुए कपड़े, वलकल वस्त्र इत्यादि ले आई और रामचंद्र जी को दे दिया, राम लक्ष्मण और सीता को, कि लो पहन लो। ऐसा कहा कैकेयी ने, लो पहन लो। और बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि कैकेयी सोच रही थी कहीं बदल नहीं जाए इनका मन, इतने सारे लोग क्या क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जाने को मना कर दें। इसलिए तुरंत कपड़े ले आए, ये लो पहनो। श्री रामचंद्र ने अपने जो रेशमी वस्त्र उन्होंने धारण किए थे उनको उतार दिया और वलकल वस्त्र पहन लिए। लक्ष्मण ने भी अपने रेशमी वस्त्रों को उतार कर अपने पिता के सामने ही, पिता देख रहे हैं दशरथ महाराज कैसा कष्ट हो रहा होगा, एक राजपुत्र, एक युवराज, राजकुमार वलकल वस्त्र धारण कर रहे। और फिर जब इन दोनों ने कपड़े पहन लिए, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, सीता ने कभी देखा नहीं था कि वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, ये जो वन में लोग रहते हैं। तो सीता को वलकल वस्त्र मिले थे, सीता प्रयास कर रही थी अपने शरीर के ऊपर रख करके कैसे पहना जाता है, और फिर वो पहन नहीं पाई तो उन्होंने एक ऐसे ही गले में डाल ली और एक हाथ में पकड़ा हुआ था वलकल वस्त्र, और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने श्री राम से पूछा कि ये जो मुनि इत्यादि वन में रहते हैं, कैसे इन कपड़ों को पहनते। देखिए सीता की क्या अवस्था हुई होगी, सबके सामने, यहाँ सभा में बहुत से लोग, मंत्री, सैन्य, माताएं, और सीता को उनके सामने इस तरह का अपमान। तो सीता ने श्री राम से पूछा और श्री राम ने स्वयं आकर, जैसे उसने जो कपड़े पहने थे उनके ऊपर ही इन वलकल वस्त्रों को पहनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही श्री राम ने किया सारी स्त्रियां रोने लगी, और सारी स्त्रियों ने श्री राम से कहा कि राम, हम जानते हैं कि तुम धर्म का पालन करने वाले हो, तुम धर्म को कभी नहीं त्यागोगे, तो तुम्हें अगर जाना है वन में तो चले जाओ, लेकिन सीता को मत लेके जाओ। सीता के लिए वनवास नहीं मांगा है कैकेयी ने, केवल तुम्हारे लिए मांगा है, तो तुम जाओ, सीता को यहीं छोड़ जाओ, ये राजकुमारी है, ये रह नहीं पाएगी वन में, ये यहीं रहेगी। लेकिन श्री रामचंद्र ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने वस्त्र पहनाए और इस दृश्य को देखकर वशिष्ठ मुनि अपने क्रोध को वश में नहीं रख पाए और वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित हो गए और फिर वो कह कही कोई फटकारने लगे। उन्होंने कहा कि सीता देवी वलकल वस्त्र धारण नहीं करेंगे और सारे लोग देखने लगे क्योंकि वशिष्ठ मुनि अपनी शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। वशिष्ठ मुनि बहुत कम क्रोध करते हैं, जैसे हमने पहली बार भी सुना है जब विश्वामित्र मुनि आए थे, उन्होंने आक्रमण किया वशिष्ठ मुनि के ऊपर, गाय को ले जाने लगे, वशिष्ठ मुनि ने कोई विरोध ज्यादा नहीं किया। हाँ, जब बहुत ज्यादा आपत्ति हुई आश्रम पर तब उन्होंने केवल अपने ब्रह्म दंड का प्रयोग किया। तो यहां वशिष्ठ मुनि बड़े क्रोध में हो गए और उन्होंने कहा कि सीता वलकल वस्त्र धारण नहीं करेंगी, सीता सारे आभूषण पहनकर जाएंगी, सीता एक राजकुमारी की तरह जाएंगी, वैसे तो सीता को जाना ही नहीं चाहिए, सीता अर्धांगिनी है और उस दृष्टि से ये राज्य पे उनको राज्य करना चाहिए, श्री राम वन में जाएंगे और सीता इस सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे, ये उसका अधिकार है। लेकिन अगर फिर भी वो अपने पति की सेवा के लिए जाना चाहती है तो वो वलकल वस्त्र धारण नहीं करेगी। और उस समय बहुत निंदा की वशिष्ठ मुनि ने कह कही कि तुम कैसे, तुम्हारा हृदय है और अगर तुम्हें वरदान मांगना था तुमने कैसे सीता को वलकल वस्त्र दिए, तुमने जब वरदान मांगा तो ये नहीं मांगा था। तो खैर दशरथ महाराज ये सब सुन रहे थे, बड़े दुखी हुए और दशरथ महाराज ने फिर आदेश दिया कि सीता के लिए खजांची को उन्होंने बुलाया अपने कोषाध्यक्ष को और कहा कि कोष से सीता के लिए वस्त्र, इतने वस्त्र लाए जाए जो 14 वर्ष के लिए पूरे हों और साथ साथ उन्हें आभूषण प्रदान किए जाएं। तो सीता देवी सारे वस्त्र और आभूषण लेकर जाएंगी 14 वर्षों के लिए ताकि उन्हें कष्ट नहीं हो वन में। तो तुरंत कोषाध्यक्ष सब लेकर आए, फिर सीता देवी ने आभूषणों को धारण किया क्योंकि आज्ञा थी दशरथ महाराज की और कैकेयी ने ऐसा कहा नहीं था कि वो धारण नहीं करेंगे। तो उन्होंने आभूषण धारण किए और अब तीनों वन में जाने के लिए तैयार थे। श्री रामचंद्र ने अपने पिता से प्रार्थना की, मेरी माता कौशल्या बड़ी वृद्ध हो गई हैं, बहुत प्रेम करती हैं मुझसे और मैं जानता हूं कि अगर मैं वन में जाऊंगा तो शायद ही अपने प्राणों को बनाए नहीं रख पाए, मेरे विरह में मेरे दुख में अपने प्राणों को त्याग दें, इसीलिए आपसे विनती है कि आप इनकी रक्षा कीजिए, आप इनकी देखभाल कीजिए। और फिर उन्होंने कौशल्या को प्रणाम करने के लिए वो आगे गए, सीता देवी ने प्रणाम किया, कौशल्या ने सीता को अपने गले से लगाया, सीता का माथा चूमा और सीता को कहने लगी कि तुमने एक पत्नी के धर्म का पालन किया है। एक पत्नी का धर्म है कि वो हर अवस्था में अपने पति की सेवा करे, पति को त्यागे नहीं। ऐसी स्त्री जो जब आनंद का समय होता है अपने पति का साथ देती है लेकिन जब पति कष्टों में हो दुख में हो तो उसे त्याग दे, असती कहलाती है। लेकिन तुम धर्म का पालन करना, राम को कभी त्यागना नहीं, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। वैसे कौशल्या देवी एक बहुत सुंदर भक्ति का सिद्धांत इन जस्ट थोड़े से वाक्यों में प्रस्तुत करती हैं। वो कहती हैं कि एक सती स्त्री को अपने पति को कभी नहीं त्यागना चाहिए, किसी भी अवस्था में त्यागना नहीं चाहिए, चाहे उसको अपने कितने ही पुत्रों को छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, लेकिन पति को नहीं त्यागना चाहिए। तो वो समझा रही है कि एक जीव जो एक बार भगवान को, श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले, फिर उसे किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण को त्यागना नहीं चाहिए, वो एक ही स्वामी है हमारे। ऐसा नहीं है कि जब भक्ति में आनंद हो तब तो हम बहुत कृष्ण की भक्ति करें, अगर भक्ति से हमारा लाभ हो तब तो हम रोज मंदिर आए, और जहां अगर कुछ तकलीफ होने लगे तो हम कृष्ण को त्याग दें। नहीं, भक्ति ये नहीं है। कौशल्य देवी समझा रही है कि भक्ति क्या है, हर अवस्था में, हर स्थिति में। जब पति के पास बहुत धन हो, जब पति बहुत आनंद प्रदान करे, जब पति बहुत सुविधाएं प्रदान करे, तब तो रहना ही है। लेकिन अगर पति कुछ नहीं कर पाए, वो सुविधा नहीं दे पाए, धन नहीं हो, मान सम्मान ना हो, वन में रहना पड़े, तो भी वैसे ही सेवा करना। अर्थात जब कृष्ण भक्ति में हमें बड़ा आनंद हो, हम कृष्ण भक्ति में आए और अचानक हमारे घर में बहुत धन आ जाए, हमें लगे हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं इसीलिए धन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। लेकिन अगर वो धन चला जाए, मान सम्मान चला जाए, तो भी कृष्ण को त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि हम चुनाव में खड़े हैं, चुनाव से पहले मंदिर में आएंगे, अगर चुनाव जीत गए तो फिर मंदिर में फिर आएंगे, चुनाव हार गए तो मंदिर की ओर देखेंगे भी नहीं। ये भक्ति नहीं है, ये सौदा है, व्यापार है। तो कौशल्य देवी समझा रही है कि हर अवस्था में, हर स्थिति में हमें भक्ति को त्यागना नहीं। भगवान तो बहुत सी परीक्षाएं लेंगे, भक्ति मार्ग ही परीक्षाओं से भरा हुआ है। पदम पदम विपदाम, ये जगत ऐसा है कि हर पद पर यहां विपदा है। लेकिन भागवत कहता है, समाश्रित ये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिवत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेशाम। भागवत कहता है कि ये जो जगत है भरा हुआ है विपदाओं से, कष्टों से, पदम पदम यत विपदाम। लेकिन उन लोगों के लिए समाश्रिता, जिन्होंने आश्रय लिया है किसका, श्री कृष्ण के चरण कमलों का, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। जो भगवान या भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय लेते हैं, उन लोगों के लिए ये जो भवसागर है, ये बड़ा समुद्र है, ये एक छोटा सा स्थान बन जाता है, एक गाय के खुर की तरह। पदम पदम यत विपदाम न तेषां, फिर उनके लिए कोई कष्ट नहीं रहता। तो कौशल्य देवी अपने निर्देशों से जो सीता देवी को दे रही हैं, समझा रही हैं कि कैसे हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। हर अवस्था में, हर स्थिति में, कष्ट में, सुख में, दुख में, कृष्ण को नहीं त्यागना चाहिए। ये हमारी परीक्षा, कृष्ण परीक्षा लेते हैं, हम सबकी लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है वो भक्त बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, हमारे को, हमें ही घर में तकलीफ है। ऐसा नहीं है, भगवान हर एक की परीक्षा लेते, और जब तक हम इस परीक्षा में पास नहीं होते, इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, हम श्री कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। कष्टों को सहन करना सीखना चाहिए। एक बार एक बहुत सुंदर मग मिट्टी का स्थान पर रखा था, जब कोई व्यक्ति उसे उठाने गया तो मग उससे बात करने लगा और वो अपनी कहानी बताने लगा। मैं ऐसा नहीं था, ये जो आज मेरा बहुत सुंदर रूप आप देख रहे हैं, मैं लाल रंग की मिट्टी था, केवल गंदी मिट्टी। फिर एक कुंभार ने मुझे लिया और शुरुआत में बहुत मारा मुझे, जोर जोर से हाथों से मार रहा था वो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मत करो मत करो, बस बंद करो। कुंभार ने कहा, बस अभी नहीं, थोड़ा और। उसके बाद अचानक मुझे एक पहिए पर बिठा दिया गया और जोर जोर से पहिया घूम रहा था, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, मैं बार बार घूम रहा था, सोच रहा था मर जाऊंगा, मैं चिल्ला रहा था, बस। कुंभार ने कहा, थोड़ा सा और, अभी नहीं। और उसके बाद वो घूमना बंद हुआ और फिर अचानक मैंने देखा कि उस कुंभार ने मुझे एक ऐसे स्थान पर डाल दिया जब बहुत गर्मी थी, नीचे आग जल रही थी और मैं अंदर से चिल्ला रहा था निकालो बाहर निकालो बाहर, लेकिन कुंभार मुझे हाथ दिखा रहा था अभी नहीं थोड़ा सा रुको। फिर मुझे उसने बाहर निकाला, मैंने मेरी जान में जान आई, लेकिन अचानक बहुत अलग अलग रंग के धुएं आने लग गए, मेरी सांस रुकने लगी, मैं चिल्ला रहा था बंद करो बंद करो, कुंभार ने कहा अभी नहीं। और फिर अचानक मुझे गर्म कमरे में फिर से डाल दिया गया, ये तो उससे भी ज्यादा गर्म था। मैं चिल्लाने लगा, मुझे लग रहा था अब मेरी प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन कुंभार ने कहा अभी नहीं थोड़ा सा और। और फिर उसने जब मुझे बाहर निकाला और उसके बाद उसने मुझे शीशा दिखलाया कि देखो, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कौन है। और उस समय कुंभार ने मुझे समझाया कि अगर मैं पहले तुम्हें थोड़ा मारता नहीं तो तुम एक साथ नहीं आते, टूट जाते। अगर मैं तुम्हें ऐसे घुमाता नहीं, घुमाना रोक देता तो तुम्हारा आकार नहीं आता। अगर मैं तुम्हें गर्म नहीं करता तो तुम टूट जाते आकार आने के बाद भी। अगर मैं रंग नहीं लाता तो तुम्हारा जीवन रंगहीन रहता, और अगर मैं फिर से तुम्हें नहीं डालता तो ये जो रंग है ये बने नहीं रहते, और आज जो तुम्हारा स्वरूप है ये केवल उन कष्टों के कारण। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। कुंभार भगवान है या भगवान के भक्त, जो हमारे जीवन को एक आकार देना चाहते हैं, जो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जैसे कुंभार जब मिट्टी उठाता है, मिट्टी नहीं जानती उसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन कुंभार जानता है कि इस मिट्टी का क्या होने वाला है। वो बनाने से पहले ही उसके मन में वो आकार होता है, और इसीलिए वो उस पहिए पर रखकर उसको अपने हाथों से बड़े प्रेम से आकार देता है। हाँ, उस समय मिट्टी को कष्ट होता है क्योंकि मारता है, अंदर हाथ रख के बाहर से मारता है, मिट्टी को लगता है मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, लेकिन कुंभार जानता है कि इसका क्या असर होगा। इसी तरह हम हैं, हम जब भक्ति में आते हैं, अगर हम अपने आप को गुरु के हाथ में, भगवान के हाथ में सौंप दें तो हो सकता है कष्ट हो, थोड़ा बहुत ऐसे लगे कि मार पड़ रही है, गर्मी है इत्यादि, लेकिन गुरु जानते हैं, भगवान जानते हैं कि अगर ये श्रद्धा रहकर बना रहा इस मार्ग में तो फिर आगे चलकर इसको शुद्ध भक्त बनना है, तो वो बनाने के लिए हमें कष्टों से गुजरना होता है। इसलिए कष्टों से हमें घबराना नहीं चाहिए, भक्ति के कष्टों से। भक्ति के जो कष्ट हैं ये तो हमें प्रेरणा देते हैं, ये तो हमें भक्ति करने के लिए और प्रेरित करते हैं, करने चाहिए। तो इस तरह से श्री रामचंद्र अब जाने के लिए तैयार होने लगे। कौशल्या देवी ने उपदेश दिया सीता देवी को कि किसी भी कष्ट में त्यागना नहीं भगवान को, और सीता देवी ने कहा कि आपने जो कहा है मुझे पहले से विदित है। वैसे सीता देवी को विवाह के समय उनकी माता ने भी ये सब ज्ञान दिया था, तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, मैं किसी भी अवस्था में श्री राम की सेवा को नहीं त्याग सकती। और फिर लक्ष्मण अपनी माता से मिलने जाते हैं, सुमित्रा देवी से। वैसे रामायण में सुमित्रा और उर्मिला का ज्यादा वर्णन नहीं हुआ है, ना ही अन्य स्थानों पर या अन्य लेखकों ने इनके विषय में कुछ ज्यादा वर्णन किया है, लेकिन फिर भी इन दोनों का चरित्र बहुत महान है। सुमित्रा देवी का तो थोड़ा बहुत वर्णन हुआ है, मगर उर्मिला के विषय में केवल लोक कथाएं हैं, ज्यादा कोई प्रामाणिक वर्णन नहीं मिलता है। सुमित्रा देवी के पास गए लक्ष्मण, प्रणाम किया सुमित्रा देवी को। सुमित्रा देवी ने प्रसन्नता से लक्ष्मण को उठाया, उनके माथे को चूमा और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण, प्रसन्नता से किया। और उन्होंने कहा सुमित्रा देवी ने कि प्रसन्नता से जाओ वन में। अब तुम जा रहे हो श्री राम की सदैव सेवा करना, कभी त्यागना नहीं श्री राम की सेवा को। और वे बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं रामं दशरथं विद्धि माम विद्धिं जनकात्मजं अयोध्याम अटविं विद्धिं गच्छतात यथा सुखं। अपने पुत्र को संबोधित कर रहे हैं, हे तात हे पुत्र गच्छतात यथा सुखम, बड़े सुख से जाओ, कोई चिंता नहीं करना, कोई दुख नहीं करना, रोष नहीं करना, यथा सुखम सुख से जाओ। कहां? अटवीम, अटवीम अर्थात वन में। और वो क्या कहती हैं उससे पहले कि रामम, राम को तुम दशरथ मानना, आज से राम तुम्हारे पिता हैं। और जो जनक आत्मजा है अर्थात जो सीता देवी हैं वो मेरा स्थान लेंगी, अर्थात मैं अब तुम्हारे साथ सीता देवी के रूप में हूं, अर्थात सीता को अपनी माँ मानना और राम को अपने पिता। और अयोध्या कहाँ है तुम्हारे लिए? अटविम वन में, जो वन है वो तुम्हारे लिए अब अयोध्या है। और इस भाव में गच्छतात यथा सुखम, सुख से जाना, चिंता नहीं करना। देखिए ये सुमित्रा का केवल एक दो तीन श्लोकों में ही सुमित्रा देवी की महानता का वर्णन किया गया है। जहां कौशल्या आंसू बहा रही थी अपने पुत्र के लिए, दशरथ महाराज मूर्छित हुए गिरे पड़े थे कि मेरा पुत्र जा रहा है, हा पुत्र हा पुत्र, वहां सुमित्रा का चरित्र देखिए, प्रसन्नता से भेज रही है, गर्व है सुमित्रा को। मान लीजिए वो कह रही हो कि इसी दिन के लिए मैंने लक्ष्मण को जन्म दिया, आज मेरा जीवन, आज मेरा पुत्र को जन्म देना सार्थक हुआ, क्योंकि लक्ष्मण ने श्री राम की सेवा के लिए वनवास को स्वीकार किया। तो एक माँ के लिए ये बड़ा कठिन समय है। बाकी कौशल्या रो रही है, सब रो, सुमित्रा भी रो सकती थी, सुमित्रा भी प्रार्थना कर सकती थी लक्ष्मण से कि तुम्हें तो वनवास नहीं हुआ है, तुम क्यों जा रहे हो, मेरा कौन ख्याल करेगा, मेरी कौन चिंता करेगा। आपको स्मरण होगा कि जब सुमित्रा देवी ने खीर का आस्वादन किया था तो सबसे अंत में लिया था, सबसे पहले कौशल्या ने लिया, फिर कैकई ने लिया और सुमित्रा ने अंत में लिया। उसका कारण यही था, उसी समय से सुमित्रा ने निश्चय किया था कि मेरे जो पुत्र होंगे वो केवल सेवा करेंगे इन दोनों की, और वही हुआ। लक्ष्मण ने राम की और शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की, कभी अपने आप को स्वामी नहीं माना, कभी इच्छा नहीं की। तो ये सुमित्रा देवी ने अपने पुत्रों को जन्म के समय संस्कार दिए कि कैसे सेवा को महत्व देना चाहिए, सुमित्रा देवी ने दिया। नहीं तो कौन ऐसी माँ होगी जो प्रेम से आनंद से अपने पुत्र को 14 वर्षों के लिए वन में भेजेगी। बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से लगता है कि कितनी क्रूर माँ है, अपने पुत्र को कह रही है गच्छ तो हम प्रसन्नता से जाओ, जाओ बच्चे से जाओ, आराम से जाओ वन में, 14 वर्षों तक रहो। लेकिन सेवा की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो कितना बड़ा त्याग सुमित्रा देवी का है। बिना आंखों में आंसू लाए, बिना कोई विरोध किए, बिना कोई याचना किए, प्रसन्नता से उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम सेवा करना। और साथ साथ उन्होंने कहा कि सेवा में कमी नहीं करना, कभी भी श्री राम की सेवा में सतर्क रहना। वैसे उर्मिला देवी के लिए ऐसी लोक कथाएं बताई जाती हैं। एक कथा ऐसी है कि लक्ष्मण ने जाते समय उर्मिला से कहा था कि रोना नहीं, मेरे वापस आने तक आंसू नहीं बहाना। तो ऐसा हुआ कि लक्ष्मण चले गए, सुमित्रा ने आंसू नहीं बहाए। दशरथ महाराज ने अपना देह त्याग दिया, उर्मिला ने आंसू नहीं बहाए, केवल अपने पति के आज्ञा का पालन करने के लिए। और एक कहा, ऐसे लोक कथा भी कही जाती है कि उर्मिला ने श्री लक्ष्मण जी की सेवा की। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं और उनके बदले में उर्मिला सो रही थी, ऐसा वर्णन किया गया कि वो अपने महल से बाहर नहीं आई 14 वर्षों तक, क्योंकि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि मेरे पति सेवा करेंगे श्री रामचंद्र की, तो अगर वो सो गए तो कैसे सेवा होगी, रक्षा कैसे करेंगे, तो इसलिए उनके बदले ये सो रही थी। ऐसा लोक कथाएं हैं, केवल ये समझाने के लिए कि जैसा त्याग और वैराग्य की सुमित्रा ने दिखलाया, या जैसे सेवा की भावना, त्याग किस लिए, सेवा के लिए, इसलिए हमें ये सीखना चाहिए सुमित्रा और उर्मिला से कि उन दोनों ने जो त्याग किया वो सेवा के लिए किया, अन्यथा त्याग व्यर्थ है। केवल वैराग्य, केवल त्याग जिसमें भक्ति ना हो, कृष्ण की सेवा ना हो, ऐसा त्याग और ऐसा वैराग्य निरर्थक है, कोई लाभ नहीं है ऐसे त्याग का। जीवन में लोग बहुत बड़े बड़े त्याग करते हैं, बड़े बड़े त्यागी बनते हैं। ऐसे एक विशेष धर्म के लोग हैं जो बहुत ज्यादा त्याग और वैराग्य को दर्शाते हैं, लेकिन ऐसे वैराग्य का कोई लाभ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, अगर वो कृष्ण से जुड़ा नहीं है, अगर उसका उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, उसका उद्देश्य कृष्ण की सेवा नहीं है। इससे अच्छा तो भोगी व्यक्ति है जो भोगों में रह के कृष्ण की सेवा कर रहा है। एक ऐसा पुरुष जो त्यागी है, सारे भोगों से परे है, लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति जो भोगी है लेकिन कृष्ण की सेवा में लगा है, कहीं ज्यादा अच्छा। क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल वैराग्य लाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल कुछ त्याग कर देना नहीं है, जीवन का उद्देश्य तपस्या, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, ये सब जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये केवल जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के सहायक हैं। हम तपस्या करते हैं ताकि कृष्ण को प्राप्त कर सकें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ताकि कृष्ण को प्राप्त कर सकें, दान, धर्म, उपवास केवल कृष्ण को प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर इन चीजों का उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति नहीं है तो ये व्यर्थ है। ऐसे कई संस्थाएं हैं जहां पर बड़े बड़े सन्यासी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, बड़े कड़क नियमों का पालन करते हैं, जीवन व्यर्थ है उनका अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो। इसीलिए आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए आचार्यों ने बड़ी सरलता से इस तत्व को दर्शाया। चाहे कोई व्यक्ति घर में रहे, गृहे ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले ठाको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस स्थान में हैं, हम किस अवस्था में हैं, लेकिन हमारा मन कितना कृष्ण की ओर है, हमारी आसक्ति कितनी कृष्ण की ओर बढ़ी, इससे फर्क पड़ता। तो सुमित्रा देवी ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण को आज्ञा दी कि आप जाओ और श्री राम की सेवा करो। तो ऐसे प्रणाम किया और फिर श्री राम अपनी बाकी माताओं की ओर मुड़े। करीब 350 रानियां उस समय वहां खड़ी थी दशरथ महाराज के महल में, और श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़े, सबको प्रणाम किया, और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं इतने समय आप सबके साथ रहा, हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुए हो आपके प्रति, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिता के वचन को पूरा कर सकूं। नम्रता। श्री राम कौन सा अपराध करते थे, लेकिन श्री राम दर्शा रहे हैं कि कैसे हमें अपने वरिष्ठों के समक्ष रहना चाहिए, कैसे हमें अपने वरिष्ठों से आचरण करना चाहिए। हो सकता है हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, हो सकता है हमारे अंदर बहुत बड़ी कला है, हो सकता है हम बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वरिष्ठों के सामने हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। क्योंकि ये गुण, अब देखिए रामचंद्र जी में कितने गुण थे, अगर उनकी तुलना उनकी माताओं से की जाए तो रामचंद्र जी में तो बहुत गुण थे, कोई तुलना हो नहीं सकती। लेकिन रामचंद्र जी ने अहंकार नहीं दिखलाया, उन्होंने अपनी माताओं को आदर सम्मान प्रदान किया कि आप क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हुए होंगे आपकी सेवा में। तो ऐसा भाव एक भक्त का होना चाहिए। हम भक्ति में कितने वर्ष बिता चुके हैं, हमने भक्ति में क्या क्या प्राप्त किया है, हमारी भक्ति में क्या कला है, ये सब केवल बाहरी है। हमने हृदय में कितनी नम्रता उत्पन्न की है, हमने कितना वरिष्ठों का आदर करना सीखा है, हमने कितना अपने से भक्ति में आगे बढ़े हुए लोगों के मार्ग पर चलना सीखा है, ये भक्ति में प्रगति के लक्षण है। भक्ति की प्रगति वर्षों से नहीं होती, भक्ति की प्रगति कोई बहुत बड़ा नाम प्राप्त कर लेने से नहीं होती, भक्ति की प्रगति कोई पद या कोई बहुत बड़े बड़े मंदिर बना देने से भी नहीं होती। भक्ति की प्रगति होती है हृदय में नम्रता लाने से, भक्ति की प्रगति होती है अपनी तुच्छता को जानने से कि कितना तुच्छ हूं, कितना अयोग्य हूं मैं। भक्ति की प्रगति होती है आचार्य और गुरु के शब्दों का पालन करने से, और भक्ति की प्रगति होती है अपने से जितने भी दूसरे अन्य लोग हैं उन सबको आदर सम्मान देने से। तो ये श्री रामचंद्र जी ने दिखलाया, प्रणाम किया अपनी सभी माताओं को, क्षमा याचना की, और फिर राजा दशरथ ने आदेश दिया कि सुमंत्र जाओ एक रथ ले आओ, अच्छे घोड़ों से जुता हुआ एक रथ, और राम को इस जनपद के इस राज्य के बाहर तक छोड़कर आओ। तो सुमंत्र तुरंत चले गए रथ लाने के लिए, और दशरथ महाराज कभी मूर्छित होते, कभी देखते, कभी कुछ कहते, कभी धिक्कारते अपने आप को। जब रामचंद्र जी चलने लगे तो सारे महल में एक जोर से आवाज आने लगी, धिक्कार है दशरथ पर। लोग धिक्कारने लगे दशरथ महाराज को कि राजा होते हुए रोक नहीं पा रहे हैं रामचंद्र को, वनवास दिया है। तो दशरथ बड़ी ग्लानि में थे। इतने में सुमंत्र रथ लेकर आ गए, रथ खड़ा हुआ, सीता देवी रथ पर विराजमान हुई, रामचंद्र जी, फिर लक्ष्मण, और जो बाकी जो अन्य स्त्रियां थीं वे सब अब रथ के सामने आ गए। अयोध्यावासी सब रथ के सामने आ गए, किसी ने रथ के पहिए को पकड़ा है, किसी ने घोड़े की लगाम को पकड़ा है, जिसको जहां पर अवसर मिल रहा है वो रथ को पकड़ रहा है कि रथ आगे नहीं जाए। और रामचंद्र जी ने सुमंत्र से कहा रथ चला, हमें जाना है। और सारे लोग वहां पर कोई सीता का गुणगान कर रहे हैं कि देखो सीता कितनी भाग्यवान है, अब ये रामचंद्र जी के दर्शन सतत करेगी, और हम यहां पर अयोध्या में अपने अपने महलों में रहते हुए श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। लेकिन सीता को देखो कितने भाग्यवान है, लक्ष्मण को देखो, भाई होने का पूरा कर्तव्य निभा रहा है, एक दास की भांति श्री राम के साथ जा रहा है। तो ऐसे बहुत गुणगान करने लगे, लेकिन अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू थे। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं इतने आंसू बहे अयोध्या वासियों के कि जब रथ चला तो रथ के चलने से, रथ के पहियों से मिट्टी नहीं उठी ऊपर, क्योंकि उनके आंसुओं से वो मिट्टी दब गई थी। इतने आंसू बहाए अयोध्यावासी ने, हर एक व्यक्ति, हर एक अयोध्यावासी वहां पर उपस्थित था राम को रोकने के लिए कि राम वन में नहीं जाए। हर अयोध्यावासी रथ को पकड़ने का प्रयास कर रहा, सुमंत्र को कह रहा था रुक जाओ मत चलाओ। और यहां सुमंत्र को रामचंद्र जी कह रहे थे रथ चला। इतने में दशरथ महाराज जो अंदर महल में बैठे थे अपने आप को रोक नहीं पाए और चिल्लाए, मैं राम को देखना चाहता हूं, राम को देखना चाहता हूं, और भागे बाहर की ओर। रथ थोड़ा सा आगे चला गया था, रामचंद्र जी ने पीछे घूम कर देखा, दशरथ महाराज अस्त व्यस्त अवस्था में, कपड़ों का ख्याल नहीं, मुकुट का ख्याल नहीं, भाग रहे हैं श्री राम की ओर, सुमंत्र को पुकार रहे हैं, सुमंत्र रुक जाओ। सुमंत्र के लिए बड़ी दुविधा हो गई, एक तरफ राजा हैं जो आदेश दे रहे हैं रथ को रोको, रथ को रोको, और दूसरी तरफ श्री राम ने कह रहे हैं रथ चलाओ, तेजी से चलाओ, रोकना नहीं। अब सुमंत्र क्या करें, दशरथ महाराज उनके पीछे, कौशल्या देवी, अन्य रानियां भाग रही श्री राम को रोकने के लिए, आगे लोगों ने रोका हुआ है, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इस दुविधा में सुमंत्र पड़ गए कि राजा के आदेश का पालन करूं क्योंकि उनके राज्य में हूं, उनका मंत्री हूं, या श्री राम का जो कह रहे रथ चला। तो ऐसी बड़ी दुविधा में सुमंत्र पड़े। अब अगली बार वर्णन करेंगे कि कैसे सुमंत्र ने इस दुविधा को पार किया और कैसे श्री रामचंद्र ने वन में प्रवेश किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तभी हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण।